लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उपयाजकों की जयंती पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जयंती वर्ष में हैं, एक पौत्र वर्ष में जो हमें पश्चाताप करने, नवीनीकरण करने और विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है।
तूने मुझे बुलाया प्रभु, आया मैं तेरे द्वार, तेरे कदमों पे चलूंगा मैं, बस दे दे तेरा प्यार।
कलीसिया के इसी आह्वान पर जयंती मनाने के लिए लोग तीर्थयात्री बनकर वैटिकन आ रहे हैं। इस सप्ताह जुबली मनाने की बारी उपयाजकों की है। वैटिकन में उपयाजकों की जयंती 21 से 23 फरवरी को मनाया जा रहा है। उपयाजकों की जयंती क्या है? यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्थायी उपयाजकों को समर्पित है जो कलीसिया के भीतर विभिन्न प्रेरितीय कार्यों से जुड़े हैं। यह उनके लिए आध्यात्मिक नवीनीकरण, प्रार्थना और कलीसिया में उनकी भूमिका पर चिंतन करने का अवसर है। इस अवसर पर दुनिया भर के उपयाजक या डीकन संत पेत्रस महागीर जयकर की तीर्थ यात्रा कर पौत्र द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, जो अनुग्रह और नवीनीकरण की खोज का एक प्रतीकात्मक कार्य है। 23 फरवरी को उपयाजकों ने संत पेत्रस महागीर जयकर में समारोही ख्रिस्त त्याग में भाग लिया, जिसका अनुष्ठान संत पापा फ्रांसिस के स्थान पर कार्डिनल रिनो फिसिकेल्ला ने की। उपयाजक विभिन्न चर्चाओं एवं कार्यशालाओं में भी भाग ले रहे हैं जो सुसमाचार प्रचार, सामाजिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व में उपयाजकों की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया भर के उपयाजकों के लिए यह अवसर एक दूसरे से मुलाकात करने, अपना अनुभव साझा करने और मिशन में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का भी अवसर होगा। कात्री कलीसिया में उपयाजक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विशेषकर ईश्वचन की घोषणा, वेदी सेवा और उदार दान के माध्यम से अपनी सेवा देते हैं। वे धर्मदक्षों और पुरोहितों की सहायता करते, साथ ही समुदायों के साथ जुड़ते हैं, खासकर आध्यात्मिक सेवा के माध्यम से। पौत्र मिस्सा के दौरान उपयाजक सुसमाचार की घोषणा करते, उपदेश देते, कलीसिया के धर्म सिद्धांत के बारे बतलाते तथा प्रचारकों को सहयोग देते हैं। वे पौत्र यूखरिस्त के अनुष्ठान में पुरोहितों की सहायता करते, बपतिस्मा एवं शादी संस्कार देते तथा अंतिम संस्कार एवं दफन क्रियाओं को भी संपन्न करते हैं। उपयाजक न केवल गिरजाघर में बल्कि उससे बाहर भी परोपकार के कार्यों से जुड़े होते हैं, जैसे गरीब, बीमार और हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करना, अस्पतालों, कैद खानों और समुदायों की मदद करना। उपयाजक दो तरह के होते हैं, अस्थायी उपयाजक और स्थायी उपयाजक। अस्थायी उपयाजक वे होते हैं जो पुरोहिताभिषेक की तैयारी करते हैं, जबकि स्थायी उपयाजक वे हैं जो उपयाजक के रूप में जीवन भर के लिए अभिषिक्त होते हैं। वे पुरोहित नहीं बनते बल्कि पुरोहिताय और परोपकार के कार्यों में पुरोहितों की मदद करते हैं। उपयाजकों की भूमिका की शुरुआत हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण सात बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना एवं वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सभी को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्टेफन के अतिरिक्त अन्य लोगों को चुना और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। उपयाजक आरंभिक कलीसिया में मौजूद थे, लेकिन मध्य युग में उनकी संख्या घट गई। द्वितीय वैटिकन महासभा जो 1965 में आयोजित की गई थी, उसने स्थायी उपयाजक की भूमिका को पुनः जागृत किया और इसके महत्व को जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने कार्तिक कलीसिया में डीकन की भूमिका के बारे अक्सर बात की है और उनके मिशन को उदार कार्यों के सेवक के रूप में महत्व दिया है। वे गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों तक कलीसिया की पहुंच के लिए उपयाजकों की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं। 19 जून 2021 को एक भाषण में पोप फ्रांसिस ने उपयाजकों को याद दिलाया कि उनकी भूमिका पद या अधिकार नहीं है, बल्कि विनम्र सेवा है। वे याद दिलाते हैं कि डीकन कलीसिया में सेवा के संरक्षक हैं। वे आधे पुरोहित या दूसरे दर्जे के पुरोहित नहीं हैं, बल्कि सेवक ख्रिस्त के एक अनूठे प्रतीक हैं। पोप ने उस अवसर पर बल दिया था कि उन्हें पुरोहित बनने या पुरोहितों की तरह कार्य करने के प्रयास से बचना चाहिए तथा इसके बजाय समुदाय में प्रेम और सेवा के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पोप फ्रांसिस उपयाजकों को अक्सर गरीबों की मदद से जोड़ते हैं। 2016 के एक संबोधन में उन्होंने कहा था, उपयाजक याद दिलाते हैं कि हमें अपना विश्वास गरीबों, बीमारों और बहिष्कृत लोगों की सेवा के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। 2023 में पोप फ्रांसिस ने उपयाजकों से शांति के निर्माता बनने का आग्रह किया था, जो परिवारों, समुदायों और संघर्ष के स्थानों में कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि डीकन को सादगी एवं खुशी के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, जहां पुरोहित हमेशा नहीं पहुंच सकते। पोप फ्रांसिस ने महिला उपयाजक के विचार पर भी ध्यान दिया है। 2016 और 2020 में उनकी ऐतिहासिक भूमिका का अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि महिलाओं ने आरंभिक कलीसिया की प्रेरिताई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह पोप फ्रांसिस उपयाजकों को ख्रिस्त के सेवकों के रूप में देखते हैं, जो लोगों के जीवन में गहराई से शामिल हैं। वे उन्हें महत्वाकांक्षा से बचने, विनम्रता को अपनाने और जरूरतमंदों तक ख्रिस्त का प्यार पहुंचाने की सलाह देते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत उपयाजकों की जयंती के अवसर पर उपयाजकों के बारे एक विशेष चर्चा सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
तूने मुझे बुलाया प्रभु, आया मैं तेरे द्वार, तेरे कदमों दे दे तेरा प्यार। तूने मुझे बुलाया प्रभु, आया मैं तेरे द्वार, तेरे कदमों पे चलूंगा मैं, बस दे दे तेरा प्यार।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका मिलन। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, उत्सर्ग, सेवा, उदारता, क्षमा आदि अनेकों गुणों पर दाम्पत्य जीवन की नींव लगती है। एक तरफ सुख के साधनों के साथ स्नेह, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण भावनाएं परिवार को स्वर्ग बना देती है, तो दूसरी तरफ पति पत्नी की परस्पर आलोचना, एक दूसरे के प्रति कट्टरता और अविश्वास की भावना भी गृहस्थी को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। जब पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र व्यवहार रहन सहन पर संदेह करने लगते हैं, तो पारस्परिक मधुर संबंधों के बीच गहरी खाई पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसका असर बच्चों को भुगतना पड़ता है। वे बचपन से ही माता पिता को सिर्फ झगड़ते हुए देखते हैं। एक लड़का जिसका पालन पोषण ऐसे माहौल में होता है, वह बड़ा होकर क्रोध करने वाला मनुष्य बन जाता है। उसी तरह एक लड़की जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में होती है, तो वह बड़ी होकर कड़वी बातें बोलने वाली और गुस्सैल स्त्री बन जाती है। झगड़ते माँ बाप को देखकर वे परिवार बसाना या शादी करने के बारे भी सोचना नहीं चाहते। लड़के प्रायः घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे दंपति अपना दाम्पत्य जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। अतः समय रहते संभल जाएं, पति और पत्नी अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि नम्रता, सहिष्णुता और उदारपूर्ण क्षमा से ही दाम्पत्य जीवन निभता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका मिलन।
आप बाजार जा रहे हैं?
क्यों, ये जरूरी है क्या कि मैं तैयार हूँ? तो मतलब है मैं बाजार ही जा रहा हूँ, क्या मैं कहीं और नहीं जा सकता?
तो मुझे क्या पता कि आप बाजार नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं?
तो फिर पहले पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं।
वह भी पूछ कर देख चुकी हूँ। पता है आपने क्या कहकर मुझे डांटा कि तुम्हें क्या पंचायत है, मैं कहीं भी जाऊँ?
तो आदमी का मूड देखकर पूछना चाहिए ना।
वाह, ये भी खूब रही। पहले मैं इनका मूड देखूं, फिर जाकर कुछ पूछूं, वो भी मूड सही होने पर।
तुमसे तो बाल की खाल निकलवा लो बस। अरे अगर इतना ही दिमाग अपना तुम अब चलाती हो और लगाती हो तो बात को खुद ही समझ लो, है कि किसी और को समझाने की जरूरत ही ना पड़े।
हाँ हाँ, सारी समझदारी का ठेका तुमने ही जो ले रखा है ना।
आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम।
और आप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हो।
अब अपनी बकवास बंद करोगी तुम?
क्या, आप कहें तो बोलना और मैं कहूँ तो बकवास है?
आजकल तुम्हारा मुंह तो कैंची से भी तेज चलने लगा।
अगर किसी बात का जवाब देना मुंह चलाना है तो फिर इस दुनिया में सारे लोग मुंह चलाते हैं।
एक जवान लड़की की माँ हो गई हो, लेकिन पति की इज्जत करना अब तक नहीं सीखा तुमने।
आपने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर सिखाते तो क्या मैं सीखती नहीं?
तुम न केवल मुंहजोर हो बल्कि बेशर्म भी हो।
अब जो भी कुछ हूँ सब आप ही की तो देन हूँ।
तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
तो मुझे कौन सा शौक है आपसे बात करने का?
मम्मी, शाम को क्या बनाना है?
जो तुझे अच्छा लगे बना लेंगे।
अरे मुझे बनाना होता तो क्या मैं आपसे पूछती?
देख, अगर भिंडी अच्छी हो तो साफ कर ले, वही बना लेंगे।
हाँ ठीक है, अगर आज नहीं बनी तो कल तक तो पक्का सड़ जाएगी।
तेरे पापा से बड़ी बड़ी बातें सुन लो, दूसरों को ज्ञान बांटते फिरेंगे लेकिन खुद ज्ञान से गरीब ही हैं। अब बता साक्षी, कल ही वे सब्जी लाए और आज सब्जी खराब हो गई। सब्जी लाना तो आता नहीं।
अब सब्जी तो है मम्मी, कोई घास फूस तो नहीं।
लेकिन सब्जी के नाम पर क्या उठा कर लाए हैं, सड़ी गली सब्जी क्या आंख बंद करके खरीद रहे थे?
छोड़ो भी मम्मी, क्या लेकर बैठ गई हो आप।
अरे अगर अभी मैं ऐसी सब्जी ले आती तो तेरे पापा तो सारा घर सिर पर उठा लेते, अपनी चलाने में तो सबसे आगे हैं।
जैसे पापा के बारे में आपके विचार हैं, वैसे ही पापा आपके बारे में सोचते होंगे, इसीलिए तो आजकल आप दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा है।
झगड़ती मैं नहीं बेटा, तेरे पापा ही शुरू करते हैं।
और पापा से पूछो तो पापा आपका नाम लेते हैं।
उनका तो काम ही है अपने आप को सुपर बनाए रखना।
आखिर आप दोनों हर समय झगड़ते क्यों रहते हो? क्या आप दोनों प्रेम से मिलजुल कर नहीं रह सकते?
ये तो तेरे पापा से ही पूछ कि उनको मेरे साथ मिलजुल कर रहने में क्या तकलीफ है।
पता नहीं आप दोनों का बुढ़ापा साथ में कैसे गुजरेगा।
अगर उनके रंग ढंग नहीं सुधरे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और पढ़े रहे फिर यहाँ अकेले और करते रहे मनमानी, कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा।
आप दोनों तो बच्चों से भी गए बीते हो गए हैं।
अरे बेटा, बच्चा भी एक बार किसी न किसी बात पर मान लेता है, लेकिन तेरे पापा तो जिद में बच्चों को भी पीछे छोड़ देते हैं।
पता नहीं कब आप दोनों के समझ में आएगी।
तेरे पापा के समझ में आ जाए तो ठीक है,
अब तो भगवान ही मालिक है आप दोनों का।
साक्षी, बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
साफ साफ कहूँ तो अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही।
क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर किसी तरह की परेशानी है तो कोचिंग क्लास चली जा।
अगर कुछ समझने में कठिनाई होती तो मैं कोचिंग क्लास चली जाती, लेकिन परेशानी तो आपसे और मम्मी से है।
हम दोनों से? हम दोनों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उससे तेरी पढ़ाई खराब हो रही है?
आप दोनों की रात दिन चलने वाली किचकिच। पापा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और सब कुछ मैं भी समझने लगी हूँ, लेकिन फिर भी आप दोनों बिना मेरी परवाह किए झगड़ने लग जाते हैं?
हाँ बेटा, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं।
बिना इस बात की परवाह किए कि इस आप दोनों के झगड़ों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सच है बेटी, हम दोनों ही स्वार्थी हैं।
आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप दोनों कैसे रहेंगे?
हाँ बेटी, ये बात भी है।
और अब सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी।
ये तूने क्या सोच लिया है बेटी?
हाँ पापा, अब दोनों को ही हर समय झगड़ते देख मैंने यह फैसला किया है कि जब आदमी औरत में आप दोनों की तरह झगड़ा ही होता रहेगा तो फिर शादी करने का क्या फायदा?
ये तेरी गलत फहमी है बेटा कि शादी के बाद पति पत्नी केवल झगड़ते ही रहते हैं।
मगर मैं तो बचपन से लेकर अब तक यही देखती आ रही हूँ।
मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं अब तेरी मम्मी से कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा।
गुड, यह हुई ना अच्छे पापा वाली बात।
लेकिन तेरी शादी वाली बात
अभी मम्मी को भी सुनाना बाकी है।
यार, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैं तो तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि जैसे तुम्हें बेटी से माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश की है, वैसे ही भाभी से भी माफी मांगकर बात को खत्म ही कर डालो।
मगर यार, क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उससे माफी मांगू?
और जब तुम भाभी से झगड़ा करते थे तब क्या अच्छा लगता था?
अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी भाभी से माफी मांग ली और उसके बाद भी अगर उसने झगड़ा किया तो?
भाभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। माफी में वो जादू होता है कि पहले ना करने वाला भी हाँ कर देता है। तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो।
ठीक है यार, आजमा कर देखता हूँ। सोनो सुजाता, मैं आज तक अपने किए सभी बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ।
ये आप क्या कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजियां की है, आपका अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा।
और मैं भी आपको पति का पूरा सम्मान और प्रेम दिया करूंगी।
इस घर में मैं यही सब कुछ चाहती थी, मम्मी पापा का मिलन।
हमारी ओर से अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी बेटा।
पता है, जब मैं दूसरों के मम्मी पापा को प्यार से बातें करते, हंसी मजाक करते देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं रहते।
अब तेरे मम्मी पापा भी औरों के मम्मी पापा से अलग नहीं है बेटी। इस घर में अब झगड़े के स्वर नहीं बल्कि खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी।
मैं तेरे पापा का ऐसा ही व्यवहार देखना चाहती थी।
और मैं तेरी मम्मी का यही रूप देखना चाहता था।
इस घर में अब सब केवल खुशी के रूप में ही दिखाई देंगे, क्योंकि मम्मी पापा का मिलन जो हो गया है।
मिलन। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, दिव्या शूलिया, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।